लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी वंचना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेल ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। अधिकांश यात्री अपने अपने डिब्बों में बैठ गए थे। केवल कुछ ऐसे लोग जो किसी को पहुंचाने आए थे, अथवा वे लोग जो ट्रेन के गतिवान होने पर ही सवार होते हैं, प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थे। सहसा गार्ड ने सीटी दी। प्लेटफॉर्म पर उपस्थित लोग गाड़ी पर चढ़ गए। इसी समय एक युवक, जिसकी आयु 24-25 वर्ष की लगभग थी, कुली पर एक ट्रंक तथा बिस्तर रखवाए लपकता हुआ आया और एक सेकेंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। इसी समय गाड़ी चल दी। युवक ने बटुआ निकाला और कुली को पैसे दिए। कुली चलती गाड़ी से उतर गया। युवक ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। खिड़की के निकट वाली एक बर्थ पर एक एंग्लो इंडियन सुंदर युवती अर्धशयनावस्था में बैठी एक अंग्रेजी की मैगजीन देख रही थी। इसके अतिरिक्त दर्जे में कोई नहीं था। युवक ने दूसरी ओर खिड़की के निकट वाली बर्थ पर अपना आसन जमाया। कुछ क्षण पश्चात युवक ने अपना सिगरेट केस निकालकर युवती से अंग्रेजी में कहा, मेरे सिगरेट पीने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? युवती मुस्कुराकर बोली, कदापि नहीं, मैं स्वयं सिगरेट पीती हूं। युवक उठकर युवती के निकट पहुंचा और अपना केस उसकी ओर बढ़ाकर बोला, लीजिए। युवती ने धन्यवाद कहकर एक सिगरेट निकाल ली। युवक ने तुरंत दिया सलाई जलाकर युवती का सिगरेट सुलगा दिया और तत्पश्चात अपने स्थान पर आकर स्वयं सिगरेट सुलगाया। कुछ क्षण पश्चात युवक ने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? कलकत्ता। खूब, मैं भी कलकत्ता जा रहा हूं। तब तो हमारा आपका साथ अंत तक रहेगा, युवती ने मुस्कुराकर कहा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कलकत्ता में क्या करती हैं? मेरे पिता का एक होटल है, ये कहकर युवती ने होटल का नाम बताया। युवक प्रसन्नतापूर्वक स्वर में बोला, ओह, ये होटल कहाँ है? युवती ने स्थान का नाम बताया। तब तो अच्छा होटल होगा, उस ओर बड़े ही बड़े होटल हैं। जी हाँ। कुछ क्षण मौन रहकर युवक ने पूछा, क्या आपके होटल में हिंदुस्तानी भी ठहर सकते हैं? हाँ हाँ, ठहरते भी हैं, परंतु बहुत कम। वे ही लोग ठहरते हैं जो अमीर हैं और जिनका रहन सहन यूरोपियन ढंग का है। खैर, ये तो आवश्यक ही है, यूरोपियन ढंग के होटल में ऐसा नियम होना स्वाभाविक ही है। क्या आप ठहरना चाहते हैं? ठहर तो जाता है, परंतु वहां मैं कुछ संकुचित रहूंगा। मुझे अपनी योग्य सोसाइटी न मिलेगी, अलग अलग जैसा रहूंगा। केवल एक आप ही ऐसी होंगी जिनसे मैं बात कर सकूंगा। आप तो वहां नित्य जाती होंगी? मुझे अधिकांश समय वहीं रहना पड़ता है, क्योंकि हम स्वयं भी उसी होटल में रहते हैं। अच्छा, ये बड़ी सुंदर बात है। इसलिए आपका जीना उबने पाएगा, मैं अपने माता पिता से आपका परिचय करा दूंगी। ऐसी दशा में तो मैं वहां रह सकता हूं। बड़ी सुंदर बात है। युवक ने सोचा कि जरा ये भी पूछ लो कि होटल का खर्च किस हिसाब से पड़ेगा, परंतु फिर उसने ये सोचकर इस संबंध में मौन रहना ही उचित समझा कि ऐसी बात पूछना टुच्चापन होगा। युवक ने कहा, तब तो मैं आपके होटल में ही ठहरूंगा। बड़ी खुशी की बात है। इधर आप कहां से आ रही हैं? मैं शिमला से आ रही हूं। इस बार गर्मी का मौसम मैंने वहीं व्यतीत किया। तंदुरुस्ती कुछ ठीक नहीं रहती थी, अतः डॉक्टर ने वहीं रहने का परामर्श दिया। अब तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी मालूम होती है, युवक ने युवती के गालों की सुर्खी को देखते हुए कहा। हाँ, अब मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं। मेरा वजन भी 15 पौंड बढ़ गया है। मैं चाहती तो और बढ़ जाता, परंतु मुझे मोटापे से बड़ी घृणा है। वाकई मोटापा बुरा होता है। दूसरे दिन नियत समय पर ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर पहुंची। युवती युवक को साथ लिए बाहर आई और एक टैक्सी पर सवार होकर चली। होटल की बिल्डिंग के सामने टैक्सी रुकी। बिल्डिंग बड़ी और सुंदर थी। युवक ने पूछा, बहुत बड़ा होटल है? युवती बोली, पूरी बिल्डिंग में होटल नहीं है, आधी हमारे पास है और आधी दूसरे के पास। देखिए उसका साइन बोर्ड, वो सामने लगा है। होटल के आदमियों ने दोनों का सामान टैक्सी से उतारा। युवती बोली, देखो साहब का सामान, 18 नंबर रूम खाली है? वो तो खाली नहीं है मिस साहब, 20 नंबर खाली है। गुड, वो तो और भी अच्छा है, उसी में पहुंचाओ। युवती स्वयं युवक को 20 नंबर कमरे में पहुंचा गई। ये कमरा एक व्यक्ति के लिए था। एक और बड़ा मसहरीदार पलंग बिछा हुआ था, उस पर पूरा बिस्तर लगा हुआ था। मोटा गद्दा, गद्दे पर श्वेत चादर, दो बड़े बड़े मुलायम तकिए तथा पैताने पर हल्का कंबल रखा हुआ था। युवती ने कहा, यदि आप चाहें तो इसी बिस्तर को काम में लाएं अथवा अपना निजी बिस्तर लगवा लें।
ठीक है, देखा जाएगा।
एक और एक मेज थी जिसमें दर्पण लगा था। मेज के सामने दो कुर्सियां थीं, दूसरी ओर तीन बड़ी खिड़कियां थीं। इन खिड़कियों के पास एक आराम कुर्सी, बीच में एक छोटी गोल मेज तथा साधारण कुर्सियां थीं। एक और कपड़े टांगने की दर्पण युक्त अलमारी थी। छत में सीलिंग फैन और प्रकाश की दो हाड़ियां लटक रही थीं। पलंग के ऊपर एक बेकर लैंप था। कमरे से मिला हुआ गुसल खाना था। युवती चली गई। युवक ने अपना ट्रंक खोला। ट्रंक में रखी धोतियों को देखकर वो बड़बड़ाया, ये तो यहां के लिए बेकार हैं। उसने एक श्वेत शर्ट तथा आधी बाहों की रेशमी कमीज निकाली। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर युवक बैठा ही था कि उसी समय खानसामा चाय की ट्रे ले आया। युवक चाय पी ही रहा था, मिस आ गई और मुस्कुराकर बोली, आप आराम से तो हैं?
बड़े आराम से। यहां आराम न मिलेगा तो और कहां मिल सकता है।
खाना आप हमारे साथ खाएंगे?
जैसी आपकी इच्छा,
लेकिन मैं केवल मटन और फाउल खाता हूं।
और अंडा?
अंडा भी खा लेता हूं। मेरा मतलब यह है कि मैं पोर्क और बीफ नहीं खाता।
कोई हर्ज नहीं, जो आप खाएंगे वही खिलाया जाएगा।
ड्रिंक करते हैं?
नित्य की आदत नहीं है, कभी कभी सोसाइटी में बैठकर कर लेता हूं।
यह बड़ी अच्छी बात है। अच्छा चलिए, मैं अपने माता पिता से आपका परिचय कराऊं।
बड़ी खुशी की बात है,
कहकर युवक तुरंत उठ खड़ा हुआ। युवती तीसरी मंजिल पर पहुंची। इस मंजिल पर युवती का निवास था। युवती के माता पिता अधीर थे। दोनों ने युवक का स्वागत किया। युवती का पिता बोला, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। युवक ने भी बड़ी प्रसन्नता प्रकट की।
मिस बोली, सिनेमा चलिएगा?
युवक ने कहा, हाँ हाँ, और यहां काम ही कौन है, घूमना फिरना तो है ही है।
अच्छा तो मैं आपके साथ चलूंगी, कपड़े बदलाऊं?
थोड़ी देर में मिस सज धज कर तैयार हो गई। उधर युवक भी कपड़े पहनकर तैयार हो गया। दोनों टैक्सी लेकर सिनेमा चले। रात को जब सिनेमा से लौटे तो युवक के 25 रुपये ठंडे हो चुके थे। अब नित्य होने लगा। संध्या के समय मिस युवक को लेकर निकल जाती और खूब घुमा फिरा कर लौटती। युवक के 15-20 रुपये खर्च हो जाते थे। युवक इस समय अपने को स्वर्ग में समझ रहा था। यद्यपि मिस पर युवक की कुदृष्टि थी, परंतु इतना साहस नहीं पड़ता था कि कुछ हाथ पांव फैला सके। इसी प्रकार एक सप्ताह व्यतीत हो गया। युवक की बटुए की मोटाई प्रतिदिन कम हो रही थी। उसने हिसाब लगाया तो 200 रुपये केवल घूमने फिरने में खर्च हो चुके थे। युवक के पास कुल 500 रुपये शेष रह गए थे। उसने हिसाब लगाया कि अभी एक सप्ताह और रहा जा सकता है। होटल का बिल अधिक से अधिक 100-150 का होगा। दूसरे सप्ताह के भी 3 दिन व्यतीत हो गए। अंत को एक दिन जब मिस युवक के कमरे में कुछ देर बैठकर जाने लगी तो युवक ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसका मुख चूम लिया। युवती ने एक तमाचा युवक के गाल पर तड़ से जमाया। युवक ने घबराकर मिस को छोड़ दिया। मिस अग्निवर्षा करती हुई बोली, हिंदुस्तानी कुत्ता, क्या तूने मुझे कोई वैश्य समझा है? तुम हिंदुस्तानी सदैव दगाबाज साबित होते हो। ये कहकर मिस कमरे के बाहर हो गई। युवक कुर्सी पर बैठ गया और विचार करने लगा, हरामजादी के घुमाने फिराने में मेरे 300-400 रुपये खर्च हो गए, ये सब बट्टे खाते गए। ऐसा जानता तो मैं यहां फटकता भी नहीं। उसी दिन से मिस ने युवक से घनिष्ठता का व्यवहार बंद कर दिया। अब वो केवल शिष्टतापूर्वक शुष्क व्यवहार करने लगी। युवक ने एकांत पाकर क्षमा याचना भी की। मिस ने उसे क्षमा तो कर दिया, परंतु व्यवहार शुष्क ही रखा। 2 दिन प्रतीक्षा करने के बाद एक दिन युवक ने खानसामा से कहा, आज मैं जा रहा हूं।
अच्छा साहब, किस गाड़ी से?
मेल से। खानसामा चला गया। 20 मिनट पश्चात वो बिल लेकर आया। 20 रुपये दैनिक तो होटल का खर्च तथा 10 रुपये दैनिक मिस की फीस, संध्या समय युवक को घुमाने फिराने की। युवक खानसामा से बोला, ये घुमाने फिराने की फीस कैसी?
मैं शाम को आपके साथ जाती थी, उसकी फीस।
तो क्या इतने बड़े होटल की मालिक की लड़की ये काम भी करती है?
लड़की? मैं इस होटल के मालिक की लड़की नहीं है।
युवक कचकचा कर बोला,
तब कौन है?
होटल की नौकर है, 10 रुपये में से इसे कमीशन मिलता है।
लेकिन वो तो अपने को लड़की बताती थी।
रहती मालिक के साथ है और उन्हें माता पिता कहती है, वे भी लड़की की तरह मानते हैं, परंतु है नौकर ही।
बिल 450 का था। युवक के पास कुल 400 रुपये बचे थे। युवक सोचने लगा, अब क्या किया जाए। सोच विचार कर उसने कहा, अच्छा जरा मिस को भेजो, वो तो नहीं है, कल बाहर गई।
क्या शहर से बाहर?
जी हाँ।
कब तक लौटेंगी?
10-12 दिन लग जाएंगे।
अच्छा, और किसी को भेजो।
यहां कोई ना आएगा।
आपको जो कुछ कहना हो ऊपर मालिक से जाकर कहिए।
युवक मालिक के पास पहुंचा और बोला, इस समय मेरे पास कुल 400 रुपये हैं और आपका बिल 450 का है। मिस की फीस आपने व्यर्थ लगाई है। मुझे ये नहीं मालूम था कि फीस देनी पड़ेगी, आपको पहले बता देना चाहिए था।
हमने समझा मिस ने आपको बता दिया होगा।
उसने कुछ नहीं बताया।
मिस बाहर गई हैं, यदि वो होती तो उससे पूछते।
तो आप क्या कहते हैं,
बिल का पूरा रुपया देना होगा?
मालिक ने शुष्कता से कहा।
युवक कुछ क्षण सोचकर बोला, अच्छा मेरी ये सोने की घड़ी जमानत में रख लीजिए, जब मैं 50 रुपये भेज दूं तो घड़ी लौटा दीजिएगा।
हाँ ये हो सकता है।
युवक होटल से चलकर एक धर्मशाला में आया। इस समय उसके पास केवल 5 रुपये बचे थे। उसने घर तार दिया। यहां मेरी जेब कट गई, सब रुपया चला गया। तुरंत 100 रुपये तार से भेजो।
उस दिन युवक ने शाम को ढाबे में भोजन किया।
अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी वंचना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।